بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياء من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکاکل ہو، اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتینت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ آج گروار ہے، خرداد کی 6، شوال کی 15 اور مئی کی 27 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا۔ کاریکرم کے بارے میں اپنے وچاروں، سجھاؤں اور پرتیکریاؤں سے اوگت کرانے کے لیے ہماری پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir، جبکہ ویب سائٹ کا پتہ ہے pastoday.com/hi۔ شوتاؤ، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سدا کی بھانتی دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم آج کی بات، اور سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھی وکاس۔ شوتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے کہا کہ جو لوگ جنتا کو متدان نہ کرنے کے لیے پریرت کر رہے ہیں وہ جنتا کے ہمدرد نہیں ہیں۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ پرتیبندھوں کی سماپتی کے بعد ہی ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ سیریا میں بدھوار کو ہوئے راشٹرپتی چنوں میں بھاری متدان کے بعد متگڑنا جاری ہے، اور کئی کھیتروں میں متگڑنا پوری ہو چکی ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی مانواڈیکار آیوکت نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے یدھ اپرادھ کی شرینی میں آ سکتے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جو لوگ جنتا کو متدان نہ کرنے کے لیے پریرت کر رہے ہیں وہ جنتا کے ہمدرد نہیں ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گروار کو دیش کے سنسد سبھاپتی اور سانسدوں کو ویڈیو لنک کے مادھیم سے سمبودھت کیا، اور چناؤ کے بارے میں کچھ اہم باتوں کا الیکھ کیا۔ انہوں نے امیدواروں کے چناوی کاریکرموں میں جنتا کی آرتھک سمسیاؤں کے بارے میں سچے سمادھان پیش کیے جانے کو چناؤ میں جنتا کی بھاگیداری کی بھاونا میں وردھی کا کارن بتایا۔ اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر نے چناوی پرتسپردھا میں اچت و انچت باتوں کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ چناؤ کا پربھاؤ برسوں لوگوں کے جیون پر چھاپ ڈالے گا، اور امید ہے کہ 18 جون کو ہونے والا چناؤ دشمنوں کی اچھا کے وپریت ایران کی عزت، مان سمان اور گرو کا کارن بنے گا۔ انہوں نے سمویدھان کی نرکشک پریشد یا گارجین کاؤنسل کی اور سے راشٹرپتی چناؤ کے لیے امیدواروں کی یوگتا کی پشت کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے بھی ذمہ داری کا آبھاس کرتے ہوئے چناؤ کے لیے نامانکن کیا تھا میں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اسی طرح جن لوگوں کی یوگتا کی پشٹی نہیں ہوئی اور انہوں نے ونمرتا کے ساتھ اسے سویکار کیا اور جنتا کو چناؤ میں بھاگ لینے کا نمنترن دیا، ان کا میں دوہرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سمبودھن میں ایرانی راشٹر سے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں کو مہتو نہ دیجیے جو اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ ووٹ نہ دیجیے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جنتا کے ہمدرد نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریہ جنتا سے کہنا چاہتا ہوں کہ چناؤ ایک دن میں ہوتا ہے لیکن اس کا پربھاؤ کئی سالوں تک باقی رہتا ہے۔ ایران کے اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر نے بل دے کر کہا کہ متدان میں سبھی بھاگ لیں، چناؤ کو اپنا سمجھیں کہ یہ واسطو میں آپ ہی کا ہے، ایشور سے مدد اور مارگ درشن کی پرارتھنا کیجیے اور جس امیدوار کو آپ اچھا و یوگی سمجھیں اسی کو ہی ووٹ دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کہا کہ پچھلے 42 سال سے دشمنوں کے کرپرچار کا ایجنڈا یہ رہا ہے کہ وہ چناؤ سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جنتا بھاگ نہیں لے گی، اور جب جنتا بھاگ لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ چناؤ میں دھاندلی ہوئی ہے، اور نرواچت راشٹرپتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دشمنی اور کرپرچار کے باوجود سبھی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا جو دھارمک کرتویہ ہے اور ایشور کی جو مرضی ہے اس کے انوسار اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر کے اس ورچوئل بھاشن سے پہلے سنسد سبھاپتی محمد باقر قالیباف نے 11ویں سنسد کے ایک سال کے کارکال کا لیکھا جوکھا پیش کیا۔
راشٹرپتی نے بل دے کر کہا کہ وکاس اور پرگتی کے مارگ کو جاری رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ہست ادیوگ پریٹن اور سانسکرتک دھروہروں کی کئی راشٹریہ پریوجناؤں کا ادھگاٹن کرتے ہوئے کہا کہ بعد والی سرکار بھی راشٹریہ پریوجناؤں کے ادھگاٹن کاریکرم کو جاری رکھ سکتی ہے اور وکاس اور پرگتی کے مارگ کو جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سرکار کے پریاس سے برسوں تک دوسرے دیشوں میں موجود ایران کی 2723 سانسکرتک دھروہروں کو سودیش واپس لایا گیا ہے۔ راشٹرپتی نے دیش کی ارتھ ویوستھا میں پریٹن کے مہتو کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ پریٹن اور سانسکرتک دھروہریں ملیوان اور آرتھک آئے کا سروت ہیں اور ان سے روزگار پیدا ہوتا ہے اور وہ وشوواسیوں کو ایرانی اور اسلامی پہچان سے اوگت کراتی ہیں۔ راشٹرپتی نے اپنے بھاشن کے آرمبھ میں جاری مہینے خورداد کو اتہاس میں شورویرتا کی رچنا کرنے والے مہینے کی سنگیا دی اور کہا کہ آشا ہے کہ اس سال بھی خورداد مہینہ ایرانی راشٹر کو اپہار و شبھ سوچنا دے گا۔
یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ سیریا میں راشٹرپتی پد کے لیے چناؤ کی مت گڑنا کئی استھانوں پر سمپن ہو گئی ہے۔ العالم ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیریا کے چناؤ آیوگ کی گھوشنا کے انوسار چناؤ کے انتم پریڑاموں کا اعلان آج رات کو یا کل صبح کیا جائے گا۔ رپورٹ کے انوسار دمشق اور دیش کے پوروتر میں استھت ہسکے اور کامشلی چھیتر میں مت گڑنا پوری ہو گئی ہے۔ العالم کے رپورٹر نے بل دے کر کہا کہ سال کے چناؤ میں لوگوں کی بھاگیداری حیران کرنے والی تھی اور کچھ پشمی سنچار مادھیموں کی اٹکلوں کے وپریت ان چناؤ میں جنتا کی بھاگیداری نے اس دیش کے دشمنوں کے مورچے پر نیا آگھات لگایا ہے۔ متدان کیندروں پر لوگوں کی بھاری بھیڑ کی تصویروں کا پرکاشن اس بات کا سوچک ہے کہ سیریا کی جنتا اپنے دیش کی راجنیتک پرکریا پر وشواس رکھتی ہے اور اب بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھوش کے نردھارن پر بل دیتی ہے۔ ان چناؤ میں لوگوں کی بھاگیداری اتنی ادھک تھی کہ اس دیش کے چناؤ آیوگ کو متدان کے سمے میں 5 گھنٹے کی وردھی کرنی پڑی۔ چناؤ میں جنتا کی بھاری بھاگیداری سے سیریا کے راشٹرپتی بشار اسد کی اس بات کی پشٹی ہو گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آتنکواد کے مقابلے میں سیریائی راشٹر و جنتا ایک جٹ ہے اور سیریا کی جنتا اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتی ہے کہ پشمی دیش ان چناؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے درشٹکون کا کوئی مہتو نہیں ہے۔
سنیکت راشٹر سنگھ کی مانواڈیکار آیوکت نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے، عام ناگرکوں کا مارا جانا اور سینیہ پرتشٹھانوں کا نشانہ بنایا جانا یدھ اپرادھ کی شرینی میں آ سکتے ہیں۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی مانواڈیکار کمشنر میشل بیشلیٹ نے گروار کو غزہ پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ عام ناگرکوں کی ہتیا اور سینیہ پرتشٹھانوں کو لکش بنانا یدھ اپرادھ کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے راشٹر سنگھ کی مانواڈیکار پریشد کی آپات کال بیٹھک کے آرمبھ میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے غزہ میں سشستر گٹوں پر بمباری کی ہے لیکن اس کے حملے عام ناگرکوں کے ہتاحت و گھائل ہونے کے کارن بنے ہیں، جبکہ اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے غزہ میں دھوست ہوئے عام پرتشٹھانوں کا کسی فلسطینی گٹ نے پریوگ کیا ہو۔ राष्ट्रसंघ में मानवाधिकार परिषद के प्रमुख ने इसी तरह फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने हेतु ज़ायोनिस्ट शासन की योजना की ओर संकेत किया और कहा कि इसराइल शेख जर्रा और दूसरे मोहल्लों से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की कार्रवाइयों को तुरंत बंद करे।
संयुक्त अरब इमारात की सरकार ने अमेरिका से कहा है कि गजा के पुनर्निर्माण में वो इस शर्त के साथ भाग लेगी कि किसी भी काम में हमास की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने संयुक्त अरब इमारात से मांग की थी कि वो गजा के पुनर्निर्माण के अभियान से जुड़ जाए, परंतु अबू धाबी के अधिकारियों ने शर्त लगा दी है कि पैसा स्थानांतरित करने और पुनर्निर्माण के किसी भी चरण में हमास की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। संयुक्त अरब इमारात के अधिकारियों ने कहा है कि गजा के पुनर्निर्माण के समस्त कार्य को मिस्र की देखरेख में होना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा है कि गजा के पुनर्निर्माण में हमास की किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए।
हमास के नेता यहिया सिनवर का कहना है कि उनका संगठन एक मिनट में 200 किलोमीटर की रेंज के सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर फायर करने की क्षमता रखता है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए सिनवर ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधी संगठन हर मिनट में 100-200 किलोमीटर के सैकड़ों मिसाइल ज़ायनी दुश्मन पर दागने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि गजा का बचाव करने के लिए प्रतिरोध ने जो प्रदर्शन किया है वो उसकी शक्ति की सिर्फ एक झलक है। गौरतलब है कि ज़ायनियों द्वारा मस्जिद अल अक्सा के अनादर और पूर्वी बैतुल मुकद्दस स्थित शेख जर्रा मोहल्ले से फिलिस्तीनियों के निष्कासन के प्रयासों के बाद गजा और इसराइल में 11 दिन तक जारी रहने वाली हालिया लड़ाई में गजा स्थित प्रतिरोधी संगठनों ने 4,000 से ज्यादा मिसाइल फायर किए थे।
और अंत में यह समाचार कि इसराइल की एक अदालत ने पूर्वी बैतुल मुकद्दस के सिलवान इलाके से फिलिस्तीनियों के निष्कासन के आदेश को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि फिलिस्तीनियों के व्यापक विरोध और गजा इसराइल के बीच हालिया लड़ाई के बाद ज़ायोनिस्ट शासन ने शेख जर्राह इलाके से फिलिस्तीनियों के निष्कासन का फैसला टाल दिया था और उसके बाद बुधवार को सिलवान इलाके के बतनुल लहवा मोहल्ले से वहां के निवासियों के निष्कासन के आदेश को स्थगित कर दिया। अदालत में जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी तो उसके बाहर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी इस मोहल्ले के मूल निवासियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे सीरिया में समाप्त हुए राष्ट्रपति चुनाव और जारी वोटों की गिनती के बारे में,
इकबाल कबीर मिन अल मुवातिनी,
और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन की, जहां युद्ध विराम के बाद इसराइल द्वारा मचाई गई तबाही की सामने आती तस्वीरों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है।
मशहदानी मुतनाकिदानी फी हाजिह सूरा।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां सोशल मीडिया के संबंध में मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम कानून से हमारे संवाददाता आपको अवगत कराएंगे।
भारत में नए डिजिटल नियमों को लेकर
तो सबसे पहले चलते हैं सीरिया और बात करते हैं सफलता पूर्वक संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव की। एक ओर जहां अमेरिका और यूरोपीय देश सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बाधाएं डालने की साजिशें रच रहे थे, तो वहीं इस देश की जनता ने चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी करके लोकतंत्र के दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। इस संबंध में दमिश्क से IRIB के संवाददाता हिसाम हिलाली एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मिसम की आवाज में।
एक लंबे दिन के बाद सीरिया की उच्च चुनाव समिति ने इस देश के राष्ट्रपति चुनाव में होने वाले मतदान की समाप्ति का ऐलान कर दिया। एक चुनाव अधिकारी का कहना है कि वोटों की गिनती उन्हीं 12,000 मतदान केंद्रों पर बिना देरी किए आरंभ हो चुकी है और उनके परिणामों को उच्च चुनाव समिति को जल्द ही दे दिया जाएगा। संभव है कि गुरुवार देर शाम तक सीरिया की संसद में चुनाव के परिणामों को पेश कर दिया जाए, जिससे ये तय हो जाएगा कि अगले 7 वर्षों तक के लिए 3 उम्मीदवारों में से कौन सीरिया का राष्ट्रपति होगा। सीरिया के एक अधिकारी का कहना है कि लाखों लोगों का इस चुनाव में भाग लेना और मतदान के बाद दमिश्क में सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ ये दर्शाती है कि लोग प्रतिरोध के समर्थन में हैं और वे सीरिया के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास रखते हैं। जहां अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार इस प्रयास में थे कि लोगों को मतदान करने से रोका जा सके, लेकिन सीरियाई जनता ने इतनी भारी संख्या में चुनाव में भाग लिया कि वोटिंग वाला दिन इस देश के राजनीतिक इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन बन गया और साथ ही इस देश के स्रोतों को चोरी करने वाले अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मारा है।
और अब चलते हैं फिलिस्तीन और बात करते हैं 12 दिनों तक जारी रहे गजा युद्ध की। अवैध ज़ायोनी शासन ने जिस क्रूरता के साथ गजा के बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों का नरसंहार किया है, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो फिलिस्तीनी राष्ट्र के हौसले को कम नहीं कर पाया और हार गया। इस बारे में गजा फिलिस्तीन से IRIB के संवाददाता इब्राहिम अहमद अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद अली कुम्मी की आवाज में।
मशहदानी मुतनाकिदानी फी हाज़िही सूरा।
एक फ्रेम में दो अलग अलग दृश्य और दृष्टिकोण। पहली तस्वीर अतिग्रहणकारी इसराइलियों की क्रूरता को बयान करती है। दूसरी तस्वीर में मलबे पर बैठा एक बच्चा है जो मलबे से निकलती फिलिस्तीनियों के अद्वितीय धैर्य और प्रतिरोध की कहानी को बयान करती है। वही बैथानून इलाके के ज्यादातर घर इसराइल के हमलों की वजह से तबाह हो गए हैं, लेकिन युद्ध विराम के साथ ही यहाँ रहने वाले अपने घरों की ओर वापस लौट आए हैं और उनके पास बताने को भी बहुत है। बैतेहानून के एक निवासी ने बताया है कि हमने ऐसे शवों को देखा जो तबाह हो चुकी इमारतों में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में फरिश्ते इन शवों के पास इकट्ठा हो गए थे। हम लोग जबालिया कैंप चले गए थे और जब वापस लौटे तो यहाँ दिल दहला देने वाले दृश्य दिखाई दिए। हम प्रतिरोध को जारी रखेंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्र, हमास, फतह, जिहाद और जनमोर्चा सब एकजुट हैं।
हम प्रतिरोध के हाथों को चूमते हैं। हम प्रतिरोधक बलों से कहना चाहते हैं, हर युद्ध में उनकी ताकत और बढ़ेगी और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ईश्वर आपको विजय करे, आपकी रक्षा करे। हमें किसी भी तरह का कोई भय और डर नहीं है।
जब आप गजा जाएंगे तो आपको बच्चों और बड़ों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। बच्चे ईद के कपड़े पहनकर गजा की वीरान गलियों में घूम रहे हैं। मासूम बच्चे कैमरे के सामने युद्ध के उन खौफनाक मंजर को बताने और सुनाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा है।
हम फिलिस्तीन के भविष्य हैं। हम अपनी मातृभूमि में रहने वाले हैं। कभी अत्याचारियों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन का साथ खाली हाथों से ही मुकाबला जरूर करेंगे। डटे रहेंगे और खुद को पवित्र कुद्स पर न्योछावर कर देंगे।
फिलिस्तीनी राष्ट्र अजय है और उन्होंने वो सेना के जिसके लिए कहा जाता था कभी नहीं हारेगी, उसे हरा दिया है। गजावासियों का कहना है कि वो नए सिरे से खुद को तैयार करेंगे क्योंकि आने वाले बरसों में भी अतिक्रमणकारियों के साथ दो दो हाथ करना है।
अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन को हमारा संदेश ये है कि हम पूरी मजबूती के साथ डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं है।
यह राष्ट्र अजय है और उस सेना को हराया है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं हारेगी। फिलिस्तीनी राष्ट्र अभी से उस युद्ध की तैयारी में जुट गया है जो आने वाले बरसों में अवैध ज़ायोनी शासन उन पर थोप सकता है। फिलिस्तीनियों के इस हौसले ने दुश्मनों के होश उड़ा रखे हैं।
इब्राहिम अहमद, खबर गुजर, सदा वसीमा, गजा, फिलिस्तीन।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत में बने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए कानून की। जहां मोदी सरकार इस कानून का बचाव कर रही है, वहीं सोशल मीडिया कंपनियां, आम आदमी और विपक्ष इस कानून को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बता रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत में नए डिजिटल नियमों को लेकर जहां सोशल मीडिया कंपनियों में हड़कंप मच गया है, वहीं सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं में भी चिंता पाई जाती है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की स्थिति के बारे में तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। नए डिजिटल नियम बुधवार से प्रभावी हो गए हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। व्हाट्सएप का कहना है कि कूट संदेशों तक पहुँच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जाएगा। ट्विटर ने नए दिशा निर्देश लागू करने के लिए सरकार से 3 महीने का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने इस नए डिजिटल नियम का बचाव करते हुए कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना है।
हम इस देश में लगभग 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, व्हाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत, आइए भारत में व्यापार करिए, पैसे कमाइए, और आपने जनता की आवाज दी उसका भी अभिनंदन है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब एक माँ मुझसे शिकायत करती है कि मेरी बेटी का जिल्टेड लवर उसकी इंटीमेट सीन को मॉर्फ रूप से सोशल मीडिया पर डाल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरे पास एक व्यक्ति आता है कि मेरे खिलाफ तथ्यहीन रूप से मेरी पूरे गरिमा को गिराने के लिए एक कैंपेन चल रहा है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? इसीलिए इस कानून में हमने क्या कहा है, सरकार नहीं करेगी, आपको एक शिकायत निष्पादन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ग्रीवांस रिट्रायल मैकेनिज्म। शिकायत होगी, 24 घंटे में रजिस्टर करिए, 15 दिन में निष्पादन करिए। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया है उसका काम है कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखिए और गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन का एक व्यक्ति भारत में रखने वाला रखिए। यही तो हमने किया है। बताइए, कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उनके हैशटैग होते हैं, हमें क्या, हम चुप रहे हैं क्या?
उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की निजता का पूरी तरह सम्मान करती है और नए नियम से आम उपयोगकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मूल उद्देश्य ये पता लगाना है कि नियमों में लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश की शुरुआत किसने की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ने जिस नियम का प्रस्ताव किया है उससे व्हाट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा और इससे आम प्रयोगकर्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल है। नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपना इंटरमीडियरी दर्जा खोना पड़ सकता है। नए डिजिटल नियमों को लेकर सरकार और सोशल मीडिया मंचों के बीच जारी तनातनी के बीच विपक्ष ने भी नए डिजिटल नियम को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستوں، ہماری آج کی اس سبھا کا انتم کارکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کارکرم آج کی بات۔
آج کی بات، دوستوں، کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں احمد عباس۔ بھارت کے اتر پردیش راجیہ کے اناؤ نگر میں گھٹنا میں پولیس کی بدنام نردیتا پھر سامنے آئی ہے۔ آج ہماری چرچا کا یہی وشے ہے۔ بھارت کے اتر پردیش راجیہ کے اناؤ میں گھٹنا گھٹی جس کے بعد پولیس کی بربرتا پھر چرچا میں آ گئی۔ اناؤ پولیس پر ایک یوک کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کا آروپ لگا۔ اس گھٹنا کے بعد ظاہر ہے کہ پریوار پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبزی بیچنے والے کشور کے پریجنوں نے پولیس پر بربرتا سے اسے مار ڈالنے کا آروپ لگایا۔ پریجنوں کے آروپ لگانے کے بعد دو سپاہیوں اور ایک ہوم گارڈ پر ہتیا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ سپاہی کو سسپینڈ کرنے کے ساتھ ہی ہوم گارڈ کو برخاست کر دیا گیا۔ اناؤ کے بانگر مئو علاقے کے سبزی بیچنے والے فیصل حسین کو بانگر مئو تھانے کی پولیس اٹھا لے گئی تھی۔ فیصل کو پولیس نے لاک ڈاؤن کے الگھن میں حراست میں لیا تھا۔ پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسے پولیس پیٹتے ہوئے لے گئی تھی اور کسٹڈی میں بھی اسے بری طرح پیٹا گیا۔ جب کی حالت بگڑنے لگی تو اسے علاقے کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کا پراتھمک اپچار کیا، لیکن حالات زیادہ بگڑنے کے بعد گمبھیر حالت میں اسے ضلع اسپتال کے لیے ریفر کیا گیا۔ فیصل کو اسپتال بھیجنے کے لیے ایمبولینس بلائی گئی۔ ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ فیصل کی حالت کافی نازک تھی۔
پولیس والے لائے تھے اور ہمارے پاس بہت ہی خراب کنڈیشن میں آیا تھا، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، پیٹ میں درد لے کے آیا تھا۔ انہوں نے فرانچائز چار کیا، ریفر کر دیا اور ریفر کیا، گاڑی اسکواڈ بلائی اور گاڑی آ نہیں پائی۔ اس سے پہلے
فیصل کی موت کی خبر سے غصائے لوگوں نے بھاری سنکھیا میں بانگر مئو تھانے کے باہر پردرشن شروع کر دیا۔ پولیس کی کارروائی سے آکروشت ستھانیہ لوگوں نے دوشیوں کے خلاف کارروائی، معاوضہ اور پیڑت پریوار کو سرکاری نوکری کی مانگ کو لے کر لکھنؤ روڈ کراسنگ پر جام لگا دیا۔ پولیس نے پہلے تو اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح بہانے بازی کی، الگ الگ بیان دیے، مگر پیڑتوں نے پردرشن جاری رکھا تو پھر ورشٹھ پولیس ادھیکاری سامنے آئے اور انہوں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
آپ لوگ ذرا میرے اوپر یقین کریں، اس لیے یقین کرو بیٹا، میں لکھنؤ کا ہی مول نواسی ہوں پہلی بات، اور آپ کے جو یہاں کے لوکل منتری مہودے ہیں محسن نجار صاحب، وہ ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں، ٹھیک، ہم دونوں ساتھ پڑھے ہیں، ساتھ کرکٹ کھیلے ہیں۔ یہ بھروسہ رکھیے کہ جو آپ کا درد ہے وہ درد ہمارا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں ہم کاروائی کریں گے، میرے اوپر بھروسہ رکھو، اور سب کے سامنے سب باتیں نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کے سامنے بتا رہا ہوں کاروائی۔ ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ صاحب ایک ہوا اور اس میں کچھ نہیں ہوا، اس میں آپ ہمارے ایفرٹ کو جان نہیں پاؤ گے کتنا ایفرٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسی ادھار کا بتا رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھو کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا کام کر رہے ہیں۔
بھارت میں یہ مدعا گمبھیر چنتا کا وشے بنا ہوا ہے اور بہت لمبے سمے سے رہ رہ کر اس پر آواز اٹھتی ہے، लेकिन कभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती। इस विषय पर अध्ययन करने वालों का कहना है कि अभी तक भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत ही कार्य कर रही है, जो कि पुलिस को अपनी मनमानी करने के अत्यधिक अवसर देता है। पुलिस में राजनीतिक दखल इतना अधिक बढ़ गया है कि पुलिस संवैधानिक कम राजनैतिक अधिक दिखाई देती है। पुलिस की बर्बरता को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व आईपीएस और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विभूति नारायण राय एक लेख में लिखते हैं कि सरकारें ही नहीं चाहती कि पुलिस सभ्य हो, वे पुलिस को क्रूर बनाए रखना चाहती हैं ताकि उनका शासन उसी तरह चलता रहे जिस तरह अंग्रेजों का चला। ये पुलिस अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई और आज तक हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधानविद फैजान मुस्तफा का कहना है कि समाज में जागरूकता लाना जरूरी है, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं और पुलिस का अधिकार क्षेत्र क्या है।
मैं ये समझता हूं कि इस तरीके की जो पुलिस ब्रुटैलिटी है उसके लिए सिविल सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्या आपके राइट्स हैं अरेस्ट होने के बाद। और पुलिस टॉर्चर और कस्टोडियल वॉयलेंस के खिलाफ देश में किसी को राइट टू किल नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा समाज बनते जा रहे हैं जिसमें यह सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। अभी मैं आपको अब पिछले साल का वाकया बताता हूं, जहां तमिलनाडु की पुलिस ने इसी तरीके का काम किया।
कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि समय समय पर कई कमीशन बैठाए गए, उन्होंने पुलिस को सभ्य बनाने की कोशिशें की। आखिरी गंभीर कोशिश वर्ष 1977 में धर्मवीर कमीशन ने की, इसमें बड़े बदलाव के बीज थे। अगर इन सिफारिशों को मान लिया जाता तो पुलिस के चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन जिन्हें सुझाव मानने थे उनकी राय अलग थी। नतीजा यह है कि हालात में सुधार होने के बजाय खराबी बढ़ती जा रही है। संविधानविद फैजान मुस्तफा इस संदर्भ में कुछ आंकड़े पेश करते हैं।
कस्टोडियल डेथ्स जो है, जिसमें जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों शामिल हैं, 2019 में 1731 लोगों की डेथ हुई है, यानी हर दिन हमारे देश में 5 लोग कस्टडी में मर जाते हैं। हम जो है विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम देखें कि जो पुलिस है उसे देख के लोगों के दिल में डर और हैबत होती है, इतनी हमारी पुलिस ब्रूटल है और इतनी हमारी पुलिस जो है उसका रिकॉर्ड खराब है। और क्यों ना हो, जब हमारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बहुत बोल्डली कहेंगे, जैसे यूपी चीफ मिनिस्टर ने कहा ठोक दो, जिस तरीके से यूपी के चीफ मिनिस्टर ने लूज टॉक करते हुए, वो क्या खिलाते थे, बिरयानी, हम क्या खिलाते हैं, बुलेट। आपको मालूम है कि वो स्टेटमेंट बिरयानी खिलाने वाला जो वहां के लॉयर ने दिया था महाराष्ट्र के, बाद में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया, उन्होंने खुद कह दिया कि मैंने झूठ बोला था। आप ये सोचिए कि किस तरीके की सिचुएशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी एक रिपोर्ट की है, बाउंड बाय ब्रदरहुड, इंडियाज फेलियर टू एंड किलिंग्स इन पुलिस कस्टडी। 17 पुलिस कस्टडी डेथ्स जो 2009 से 2015 तक हुई थी उनको स्टडी किया, विक्टिम्स की फैमिली से बात हुई, विटनेसेस से बात हुई, पुलिस ऑफिसर से बात हुई, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मैटर के उनसे बात हुई, और क्या उसमें रिजल्ट्स निकल रहे हैं, थर्ड डिग्री मेथड्स यूज हो रहे हैं।
पुलिस विभाग के सुधार के विषय में पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की तहरीर भी महत्वपूर्ण है। संजीव भट्ट पुलिस विभाग के भीतर एक अन्य गंभीर समस्या को उठाते हैं। संजीव भट्ट ने लिखा कि जो पुलिस अफसर काम न करे उसे सजा के बजाय सम्मान मिले, ऐसा हो तो समझ जाइए कि पुलिस का नजरिया बदल गया है। भारत में ऐसा हुआ 1990 के बाद। गुजरात कैडर में भारतीय पुलिस सेवा के अफसर के तौर पर 27 साल गुजारने के बाद मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1990 के बाद पुलिस की सोच समझ और नजरिया पूरी तरह बदल गया। खासकर सांप्रदायिक संघर्षों के दौरान उनकी चुप्पी और अकर्मण्यता को नवाजा गया और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जबकि पुलिस का इस्तेमाल एक खास धार्मिक समुदाय के कुछ खास समूहों या लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया। ऐसा लगता है कि इससे धीरे धीरे पुलिस के भीतर एक नई तरह की संस्कृति ने जन्म लिया है। जूनियर पुलिस अफसरों और सिपाहियों के बीच ये बात घर कर गई है कि कार्रवाई न करना या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का जरिया है। इस नई संस्कृति का नतीजा न सिर्फ पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के घोर और बेशर्म उल्लंघन के रूप में दिखता है बल्कि फोर्स में अनुशासनहीनता, अक्षमता, असमानता और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। अगर इस चलन को समय रहते न समझा गया, न रोका गया और निस्तो नाबूद न किया गया तो हमें वैसे ही और ज्यादा बल्कि और ज्यादा भयानक आंतरिक विस्फोट देखने को मिलेंगे जैसे कि 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान देखे गए थे। पुलिस सुधार के विषय पर गहराई से अध्ययन करने वालों का कहना है कि संविधान के अंतर्गत पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिए केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में फैजान मुस्तफा की टिप्पणी महत्वपूर्ण है।
फिर आप ये देखिए कि इंडिया की पुलिस जो है, जो अभी कॉलोनियल पुलिस एक्ट से ही गवर्न हो रही है, इट इज डिजाइन टू इन्फोर्स पॉलिसी नॉट लॉ। ये सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। हमारे यहां हम रूल ऑफ लॉ से रूल बाय लॉ की तरफ चले जा रहे हैं। ये जितने 17 केसेस हुए थे, इन 17 केसेस में आप ये सोचिए कि ज्यादातर केसेस में जो है फैमिलीज को इन्फॉर्म नहीं किया गया विद इन 24 आवर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, थर्ड डिग्री मेथड्स यूज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु के केस में कुछ गाइडलाइंस दी, हमने आज तक उन गाइडलाइंस को इन रियलिटी इंप्लीमेंट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक्सपीरियंस शोज दैट द वर्स्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेयर द पुलिस विद अ व्यू टू सिक्योर एविडेंस और कन्फेशन ऑफन यूज थर्ड डिग्री मेथड्स इंक्लूडिंग टॉर्चर। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट।
दरअसल पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों का एक निकाय है जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग करना भी शामिल है। वर्ष 1977 में पुलिस सुधारों को केंद्र में रखकर जनता पार्टी की सरकार द्वारा श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। 4 वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को 8 रिपोर्टें सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। जब किसी भी आयोग और समिति की रिपोर्ट पर कोई प्रभावी कार्रवाई न हो तो उत्तर प्रदेश व असम में पुलिस प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह ने वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की और उसमें अपील की कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए जाएं। इस याचिका पर एक दशक तक चली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद आखिर में 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधारों पर निर्णय देते हुए राज्य और केंद्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। विदित है कि राज्य सरकारें कई बार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भी करती हैं, कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए तो कभी अपनी किसी नाकामी को छिपाने के लिए। संभवतः यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है। अगली मुलाकात तक अनुमति दीजिए। یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ ٹکاؤ آرتھک وکاس۔
دوستوں، کاریکرم ٹکاؤ آرتھک وکاس کی کنی گھڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہے۔ آج کے کاریکرم میں ہم ترکی، آذربائیجان، گنراجیہ اور آرمینیا جیسے پشچم اتری دیشوں کے ساتھ ایران کے آرتھک سمبندھوں کے وشے پر چرچا کریں گے۔ سواتی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کریں۔
अर्थशास्त्र की थ्योरी के आधार पर व्यापारिक खर्चों को कम करने की वजह से पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना एक आवश्यकता है। ईरान की आर्थिक नीतियों में से एक अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तृत करने की प्राथमिकता है। इसीलिए सन 2018 में ईरान के उन पड़ोसी देशों के लिए 50% से अधिक उत्पादन का निर्यात किया गया جن کے ساتھ سمندری اور جل سیمائیں ملتی ہیں۔
اسلامی گنتنتر ایران اپنی جیو پولیٹیکل استھتی اور کئی دیشوں کے ساتھ سیما ملنے کی وجہ سے ویاپار جگت میں بہت ہی مہتو رکھتا ہے۔ وشیش کر یہ ہے کہ ایران اور پڑوسی دیشوں کے بیچ ایتیہاسک اور سانسکرتک سمانتائیں بھی پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آرتھک لین دین مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے دیش کی بدھی جیویوں کے نکٹ پراتھمک رننیتی کے روپ میں پڑوسی دیشوں کے ساتھ آرتھک سمبندھوں میں وستار کی وشے کو پیش کیا گیا ہے۔ پرسپر ہتوں کے آدھار پر ایران اور پڑوسی دیشوں کے بیچ پائے جانے والی سنہری استھتی سارے شیتری دیشوں کے لیے بہترین افسر ہیں۔
ایران اور اس کے پڑوسی دیشوں کے بیچ پرسپر آرتھک سمبندھ وستوؤں اور سروسوں کے آدان پردان، وستوؤں کے ٹرانزٹ یاتایات سمپرک، وتیہ بینکنگ اور بیما سہیوگ سہت ایک دوسرے کے بازاروں کے پریوگ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر دیش کی اپنی ایک خاص آرتھک وشیشتا ہوتی ہے جو اس کی اپنی وشیشتا سمجھی جاتی ہے۔
अन्य देशों की भांति इस्लामी गणतंत्र ईरान भी इन विशेषताओं के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों का स्वामी है। उदाहरण स्वरूप, ईरान की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध अमेरिका के प्रतिबंधों की दृष्टिगत तुर्की अपनी विशेष और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति की वजह से और इसीलिए कि वह दक्षिणी पश्चिमी एशिया और यूरोप के लिए एक रास्ता है, ऊर्जा और वस्तुओं के ट्रांजिट के लिए एक उचित रास्ता है।
ईरान की तुर्की और अपने पश्चिमोत्तरी पड़ोसी देशों के साथ लगभग 500 किलोमीटर की संयुक्त सीमाएं हैं। ईरान के वाणिज्य कक्ष के उप प्रमुख ईरान और तुर्की के बीच आर्थिक संबंधों की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि ईरान और तुर्की क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण और बड़े देश हैं जो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव रखते हैं। ईरान मध्य एशिया के साथ सुदूर एशिया और हिंद महासागर के बीच पुल है, जबकि तुर्की मध्य पूर्व और यूरोप के बीच पुल की भूमिका अदा करता है। ये दोनों ही देश विशेष जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति से संपन्न हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी लगभग समान ही हैं। ईरान और तुर्की एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और दोनों ही देशों के बीच अच्छे व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं, या यूं कहा जाए कि दोनों ही देशों के बीच अच्छे और निकट के संबंध हैं।
ये ऐसी स्थिति में है कि दोनों देशों के बाजारों के अनुमान तथा भौगोलिक विशेषताओं, की दृष्टिगत इससे अधिक दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तार हो रहा है। ईरान और तुर्की के बीच विस्तृत आर्थिक संबंधों के स्तर की दृष्टिगत दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से प्रभावित है। यह प्रभाव द्विपक्षीय है। गैस की आपूर्ति के बारे में तुर्की बहुत अधिक सीमा तक ईरान पर निर्भर है।
कहा जाता है कि तुर्की को लंबे समय तक और स्थायी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके मुकाबले में ईरान से यूरोप निर्यात करने के लिए तुर्की के रास्ते में पड़ने की वजह से ईरान और यूरोप के व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है।
ऊर्जा के संबंध में तुर्की के साथ ईरान के महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है, जो रणनीतिक दृष्टि से तुर्की के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस्लामी गणतंत्र ईरान तुर्की के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। ईरान और तुर्की क्षेत्रीय संयुक्त संगठन ईको और D8 के सदस्य देश हैं। वर्ष 2018 के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ईरान और तुर्की के बीच लगभग 11 अरब डॉलर का व्यापारिक आदान प्रदान हुआ था।
तुर्की के लिए ईरान के पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात 7.5 अरब डॉलर था। इसी प्रकार तुर्की के लिए ईरान से निर्यात होने वाली वस्तुओं में हालिया वर्षों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोकेमिकल से जुड़ी वस्तुओं, तरबूज, खजूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शकर, शुगर क्यूब, बिल्डिंग बनाने के उपकरण, धोने के पदार्थ, टॉयलेट में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, रंगे हुए चमड़े, लौह, एल्युमिनियम और तांबे का नाम लिया जा सकता है।
अज़रबैजान गणराज्य में भी ईरान का दूसरा पड़ोसी देश है, जो कैस्पियन सागर के पूर्व में और ईरान के पश्चिमोत्तर में स्थित है। अज़रबैजान गणराज्य के बारे में ईरान की विदेशी नीति कॉकेशिया और सेंट्रल एशियाई क्षेत्रों में ईरान की पूर्ण नीति का अनुसरण है। विश्वास बहाली था तथा स्थायी शांति के मार्ग में द्विपक्षीय सहयोग, शांति और स्थिरता के प्रयासों के साथ प्राकृतिक स्रोतों के न्यायपूर्ण ढंग से लाभ उठाने पर आधारित रही है। वर्ष 1828 तक अज़रबैजान गणराज्य ईरान का भाग था और लगभग दो शताब्दी पहले तुर्क मंचाय समझौते के अंतर्गत ईरान से अलग हो गया और रूस के ज़ार शासन के हवाले कर दिया गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ष 1991 में इस देश ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी।
ईरान के राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों और मामलों में अज़रबैजान गणराज्य का हमेशा से ही महत्व रहा है। विशेषकर इस देश की स्वाधीनता के बाद तेहरान और बाकू के संबंध पहले से अधिक विस्तृत हुए हैं। ईरान और अज़रबैजान गणराज्य के बीच 700 किलोमीटर से अधिक की संयुक्त सीमा है।
ईरान और अज़रबैजान गणराज्य के बीच व्यापारिक संबंधों को विस्तृत करने और इन रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत सी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानताएं पाई जाती है। इसकी मिसाल यह है कि दोनों ही देशों के व्यापारी एक दूसरे के देश में बहुत अधिक सक्रिय हैं। अज़रबैजान गणराज्य से ईरान की चार सीमाएं मिलती हैं और इन्हीं सीमाओं द्वारा दोनों देशों के बीच वस्तुओं और चीजों का आदान प्रदान होता है।
हालिया वर्षों में CIS के सदस्य देशों में सबसे अधिक वस्तुओं का ईरान से निर्यात अज़रबैजान गणराज्य के लिए होता रहा है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि मंडलों के आने जाने से दोनों देशों के बीच राजनीतिक व आर्थिक संबंध बहुत ही मजबूत हुए हैं। अज़रबैजान गणराज्य में ईरान ने कई परियोजनाओं पर काम किया है। इसी प्रकार दोनों देशों के बीच आर्थिक लेन देन को पर्यटन के क्षेत्र में देखा जा सकता है। ईरान और अज़रबैजान गणराज्य के बीच वीजा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हर साल 30 लाख से अधिक अज़रबैजानी पर्यटक ईरान आते हैं।
उत्तरी क्षेत्र में ईरान का एक अन्य पड़ोसी देश आर्मेनिया है। वर्ष 1991 में आर्मेनिया की स्वतंत्रता के बाद इरवान और तेहरान के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए और धीरे धीरे यह संबंध विभिन्न क्षेत्रों में प्रगाढ़ होते गए और आज यह संबंध क्षेत्र में उदाहरण योग्य हो गए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने बारंबार इस विषय पर बल दिया है कि दोनों पक्षों के पास बहुत अधिक आर्थिक क्षमताएं और संभावनाएं पाई जाती है, इसलिए इन क्षमताओं के संबंधों में विस्तार और आर्थिक रेल को गति प्रदान करने की दिशा में उठाया जाना चाहिए।
सन 2018 में आर्मेनिया ने 1,40,00,000 डॉलर का सामान ईरान को निर्यात किया था, जबकि उसी वर्ष ईरान ने 27,00,00,000 डॉलर की वस्तुएं आर्मेनिया को निर्यात की थीं। आर्मेनिया की आबादी लगभग 30,00,000 की है। ईरान और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच आदान प्रदान के स्तर को 32,00,00,000 डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
कृषि, पशुपालन, गैस, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में आदान प्रदान में वृद्धि और इसी प्रकार यातायात के क्षेत्र में संबंधों के विस्तार जैसे विषयों पर दोनों देश ध्यान दे रहे हैं। जनवरी 2019 तक लगभग 5,000 ईरानी कंपनियों और पूंजी निवेशक संस्थाओं ने आर्मेनिया में आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया और इन कंपनियों ने आर्मेनिया में अनेक योजनाओं पर काम किया। बताया जाता है कि ईरान की अधिकतर कंपनियां इन्फॉर्मेशन, उद्योग, निर्माण, रियल एस्टेट और व्यापार, कृषि, पर्यटन और यातायात जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
अंत में ये कहा जा सकता है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों को विशेष महत्व देता है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़ोसियों के साथ लेन देन को वो प्राथमिकता में रखता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टिकाऊ आर्थिक विकास। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। शुभरात्रि।